ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरस्तिते नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः भक्त्या विहीनाय पराधलस्यै क्षिप्तास्य कामातितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् मैं सबसे पहले भवसागर को पार कराने वाले भगवान की कृपा मूर्ति ने परमाराध्य नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद सत सत्मद भक्ति प्रज्ञान गुरुपाद पद्म की श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि बार दंडवत ज्ञापन करता हूँ। पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के आज 100 वर्ष पूर्ति होने जा रहा है, उनके श्री चरण कमलों में मैं अपने हृदय की श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम पूजनीय सभापति महोदय त्रिदंडी खादगण, हमारे परम आदरणीय महामंडलिस्व शिशिर नारद स्वामी जी एवं बेटी उर्मिला एवं वैष्णवन एवं आदरणीय सज्जन वृंद हमारा यथायोग्य अभिवादन ग्रहण करें। हम लोगों का श्री चैतन्य महाप्रभु जी की पंचशती और हमारे परम पूज्य श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी की शताब्दी का महोत्सव आज द्वितीय दिन चल रहा है। अच्छे अच्छे वक्ताओं ने इस विषय पर अपने विचारों का प्रकाश दिया, बहुत बहुत सुंदर से सुंदर बातें सुनने को मिली। मैंने कल भक्ति श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के नाम और उनके कार्य के संबंध में मैंने कुछ जो मैं अपने गुरुपाद पद्म से या वचनों से मुख से सुना था उसको कुछ बतलाया था। वास्तव में भक्त और भगवान इन दोनों का चरित्र अप्राकृत होता है, साधारण बुद्धि के द्वारा यह अगम्य होता है, अगोचर होता है, अवांग मन को गोचर। इसलिए हमारे जैसे तुच्छ व्यक्ति को इसमें कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तभी गुरु वैष्णव के मुख से प्रसाद के रूप में हमने जो ग्रहण किया उसी का जब किंचित आप लोगों के सामने मैं वितरण कर रहा हूं। इसमें जो अच्छी बातें हैं हमारे गुरु वैष्णव की बातें हैं, और यदि इसमें कोई त्रुटियां हैं तो हमारे अपने अपनी आप की वो त्रुटि है, वो गुरु वैष्णव की बातों को समझने में हम शायद भूल गए हैं। इसलिए मैं यदि त्रुटियां हों तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सबसे पहले मुझे एक चीज मुझे ये कहना है कि आज भारतवर्ष में कुछ धर्म लड़खड़ा रहा है। हमें तो पहले हिंदू होना है, पहले हम हिंदू हैं, इसके बाद में और कुछ। यद्यपि हम आत्मतत्व की दृष्टि से न हिंदू हैं, न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न कुछ हैं, न मुसलमान हैं, न क्रिश्चियन, यह बात ठीक है, किंतु वर्तमान जगत में हम यदि हिंदुत्व न रहे तो हम कोई एक बात भी नहीं कर सकते। आज तो हमने सब लोगों को बुलाया था, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख पंजाबी जो कुछ है सब लोगों के लिए, कोई तो नहीं आया। आए वही जिनको कुछ हिंदुत्व का अभिमान है। मैं तो समझता हूं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म करीब करीब एक ही है। सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू ही हैं। आज यदि हिंदुओं को निकाल दिया जाए तो सनातन धर्म नाम की क्या चीज रहेगी। इसलिए हिंदुओं की और हिंदू की संस्कृति की रक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम लोग बात बात में लड़ रहे हैं, आज इसकी उन्नति, आज हम लोग एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है। आज मुट्ठी भर बिगड़े हुए देशद्रोही कुछ सिखों की बात बद्ध होकर के माननी पड़ रही है, उल्टे सुलटे काम कर रहे हैं, उनकी आवाज भी सुन रहे हैं लोग, कुछ न मानने योग्य भी उनकी बातें हमारे सरकार के द्वारा भी कुछ बद्ध होकर के मानी जा रही है। हम लोग थोड़े से वोटों के लिए, चाहे कोई भी राजनीति हो, राजनीतिक जगह हो, उसमें थोड़ा सा झुक जाते हैं। हमारी संस्कृति कहां लुप्त हो रही है इसकी हमारी चिंता नहीं, हम अपने स्वार्थ को देखते हैं। आज यदि हम लोग स्वार्थ से ऊपर उठ करके हमारी प्रिय बेटी उर्मिला की भांति यदि धर्म में सब लोग योगदान करें, भारत का मुखिया प्रेसिडेंट भारतीय विचारधाराओं वाला हो, इसके प्रधानमंत्री लाल बहादुर जैसे व्यक्ति हों, इसके राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र बाबू जैसे और राधाकृष्णन जैसे व्यक्ति हों, हमारे गवर्नर साहब से उड़ीसावासी विश्वनाथ जी अद्भुत ये लोग थे। इन्होंने जब जवाहरलाल जी ने कभी हमने सुना है कि इन्होंने कहा कि आप ब्राह्मणों को और संतों को प्रणाम करते हैं और मंदिरों में जा जा करके उनको पत्थर की मूर्तियों को प्रणाम करते हैं, ये भारतवर्ष के राष्ट्रपति की गरिमा के विपरीत है। तो उन्हें साथ ही साथ रिजाइन देकर के हमने सुना है, बात कितनी सत्य है मैं उतना तो नहीं कह सकता, किंतु हमने सुना है कि उन लोगों ने अपना त्याग पत्र उनके पास में दे दिया, जो पहले हम भारतवर्ष के संस्कृति के हम लोग हैं और इसके बाद में हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और गवर्नर और ये सब हम पीछे हैं। यदि ये हमारी धरोहर हमारी रक्षा नहीं हो सकती तो ये किस लिए राष्ट्र और किस लिए थी? आज हमारी गलत नीतियों के कुछ कारण से आज हमारा बर्मा निकल गया, हमारा सिलोन आज निकल गया, हमारा अफगानिस्तान चला गया, आज हमारा पंजाब चला गया, आज क्रमशः धीरे 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 आज कहाँ हमारी कास्पियन सीमें हमारे कश्यप ऋषि जी रहते थे, मंगोलिया में हमारे यहाँ के ऋषि लोग रहते थे, समस्त भारतवर्ष का बहुत बृहत्तम ये भारतवर्ष था। आज धीरे 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 संकुचित होते होते धीरे धीरे न जाने हम कहाँ जहन्नम में जाएंगे। हम देखते हैं कि इसके लिए बड़ा दुख होता है जब विचार किया जाता है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि समस्त लोग मिल करके हमारी ये संस्कृति की धरोहर को, हमारे वैदिक विचारों को, हमारे उपनिषद विचारों का ये पल्लवित अनुपुष्पित करके विश्व में सर्वत्र ये इसका प्रचार करें, जिससे विश्व में भी शांति रहे। हमारा उद्देश्य केवल हिंदू समाज के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए। इसीलिए ये हमारे नित्यलीला प्रवृत्त ओम विष्णु पार्षित भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने बहुत से लोगों में से हमारे पूज्यपाद ये भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को भी पाश्चात्य देशों में इंग्लैंड इत्यादि देशों में इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी हॉलैंड इत्यादि में भारत की यह दिव्य वाणी औपनिषद वाणी चैतन्य महाप्रभु की यह वाणियां भक्ति की विशुद्ध धारा वहां पर देने के लिए उन लोगों को भेजा। और इन्होंने वासुकी के साथ में जहां सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, सूर्य का आलोक जहां पर 6 महीने में केवल एक दिन थोड़े से अंशों में वो दिखाई पड़ता है, वहां पर चिद आलोक का प्रकाश करने के लिए इन्होंने भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को उपयुक्त पात्र समझा। क्यों समझा, मैं थोड़े से संक्षेप में उनके कुछ जीवन चरित्र के जो सुंदर विचार हैं मैं उसको प्रकाश करना चाहता हूं। कहते हैं कि ये बिन गुरु भवन भी तरे न कोई, ज्यों बिरिंग की संकर्षण होई, यदि ब्रह्मा और शंकर के समान भी यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति हो और उनका पथ प्रदर्शक गुरु नहीं हो तो कभी भी भव सागर को वो पार नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु की महिमा हमारे समस्त शास्त्रों में एक स्वर से बतलाई गई है, बिना गुरु का कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। साधारण पार्थिव ज्ञान ही नहीं हो सकता है तो परमात्म की तो बात ही क्या है। जब ये हमारे ये पूज्यपाद महाराज जी अपने युवावस्था में एक अच्छे सरकारी कर्मचारी थे, उच्च कोटि के ये थे, रेलवे में ये थे, तो कहते हैं कि भक्ति सु भगवत संग पर्यायते और भक्ति सु भगवत संगेन पर्यायते सत्संग प्राप्तते तुम्भी पूर्व जन्म सुकृते संकित। पूर्व जन्म की यदि संकित सुकृति हो और वो जब अधिक रूप में वृद्धि पा जाती है वो सुकृति, तब साधुओं का संग होता है और साधुओं के संग से ही ये भक्ति होती है और भक्ति के माध्यम से ही भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए ये जब बचपन में जब युवावस्था में राज्य कर्मचारी थे, राज्य जैसे उच्च पद पर थे, तो अपने अफसर के साथ में एक बार वो मायापुर में पहुंचे जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी की का जन्म स्थल है। वहां आकर के देखा सुरसरी के निकट भगवती गंगा के ऊपर में, जिसको गंगा जी भगवती ने चारों तरफ से आवेशित कर रखा है, 9 भागों में नवद्वीप को विभाग कर दिया है और 9 तरफ से उनको इधर से इधर घूम घाम करके नवद्वीप को अपने अंदर में हृदय में रखा है। बड़ा सुंदर प्रदेश, अत्यंत रमणीय प्रदेश, तुलसी कानून वहां राधा और श्याम कुंड का वहां पर प्रकाश किया है हमारे महापुरुषों ने। उस स्थली में जहां पर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, वहां को दर्शन करने के लिए एक बार पधारे। उस समय में इतना वैभव नहीं था जितना आजकल वहां पर वैभव है, किंतु बहुत ही सुंदर रमणीय प्रांत है। दर्शन करके बड़े मुग्ध हुए, रास्ता आने जाने का नहीं था, किसी प्रकार से कष्ट करके पैदल नवद्वीप धाम रेलवे स्टेशन से करीब करीब 3-4 माइल पैदल चलते, जी कभी पैदल नहीं चलने वाले व्यक्ति वहां पर पहुंचे। यहां आकर के जब सब दर्शन किया बड़े मुग्ध हुए। 1 बज गया दिन में, कुछ खाया पिया नहीं, न पानी पिया कुछ, कोई दुकान भी तो नहीं है यहां पर कुछ लेकर के खा सके। देखा जैसे वहीं पर एक कटहल के वृक्ष के नीचे एक ब्रह्मचारी सफेद कपड़े में वहां पर चेयर लगाए हुए बैठे हुए हैं। उनके निकट में गए, कुछ बातचीत होने लगी, बातचीत से बड़े प्रभावित हुए। ब्रह्मचारी जी बोले कि महाराज आप आए हैं बड़े दूर से, आपको मालूम होता है जो मुख सुखा हुआ, आपने पानी नहीं पिया और आपने कुछ खाया भी नहीं, तो आप कृपा करके थोड़ा सा प्रसाद यहां पर ग्रहण करें। जैसे आपने समझ लिया ये हम लोग सुखे हैं, ठीक है आप जो कुछ प्रसाद देंगे हम ग्रहण करेंगे। इन्होंने कहा जैसे ये पासी में गंगा नदी है, आप थोड़ा सा स्नान करके चले आए। स्नान करने के लिए दोनों आदमी चले गए। इतने में उस ब्रह्मचारी जी ने साथ ही साथ में चावल हाड़ी में छोड़ दिया और उसमें आलू दे दिया सिद्ध करने के लिए, और उसी के साथ में एक पोटली में कपड़े में बांध करके मूंग का दाल उसमें रख दिया और उसमें 2-1 पपीते के टुकड़े काट करके डाल दिए। 15-20 में भी आधा घंटा के अंदर ही वो स्नान करके वहां पर उपस्थित हुए। देखा क्या, चावल परोसा गया, साथ साथ में मूंग की दाल को पानी में देकर के और उसको घी और इत्यादि में फोड़न देकर के वो दाल बन गई, और आलू सिद्ध का कुछ वो भरता बना लिया, और एक को आलू को काट करके उसका वो भाजा बन गया, और पपीते का लेकर के वो सिद्ध उनको दे दिया। खा करके बड़े खुश आनंद भूख में है, किसी व्यंजन में आनंद नहीं। यदि भूख नहीं है तब तो किसी आनंद ही खाने में नहीं मिलेगा। पूछे गया क्या सब्जी भी है, कोई मिठाई उठाई है, और यदि भूख रहेगी तो नहीं पूछेगा साथ अन्न से ही या एक रोटी बिना नमक के ही रोटी बड़ी प्रिय लगेगी। बड़े प्रसन्न हुए, दो बज गया ने? इसके बाद में प्रसन्न होकर के इन्होंने कहा जय गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। अविद्याहरण नाथ मंदिर में गुरु जी बैठे हैं, बहुत से लोग सैकड़ों लोग वहां पर बैठे हुए हैं ब्रह्मचारी जी इनको लेकर के। ये ब्रह्मचारी जी और नहीं कोई, हमारे गुरु पाद पद्म जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद सिंह भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी थे। इन दोनों में बड़ा बंधुत्व रहा अंत तक, एक दूसरे के बड़े प्रिय और बड़े सख्त भाव संपन्न ये लोग थे, और अद्भुत धुरंधर और बागिनी ये थे। तो जब वो उनको बैठाया, प्रसंग चल रहा था श्रीमद् भागवत का, लब्धा तु दुर्लभमिदं बहु संभवन्ते मानुष्यं वर्धतम अनित्यमपि यह वीर तूर्णम यते समापतेत अनुमित यावत् नीतेशाय विषः खलु सर्वतश्च। अरे ये मनुष्य जन्म विषयों के भोग के लिए नहीं है। विषय क्या है? आहार निद्रा भय में सुनंच सामन्न में तत्पशुभिर्नराणम धर्मो हि शेषम अधिको विशेषा धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। भाई खाना पीना भोग विलास और बच्चों को पैदा करना, उनका परवरिश करना और अंत में सो जाना, ये तो पशु मात्र में भी जीव मात्र में सर्वत्र कमन टू ऑल है। ऐसा कोई प्राणी गधा कुकुर और भेड़ा या सुकर सुकर नहीं है जो कि खा पी करके सो नहीं जाते और खाते पीते नहीं है, स्त्री प्रसंग नहीं करते हैं और भोगों में नहीं लग जाते हैं और बच्चों का पालन नहीं करते हैं। यदि सारा जीवन इसी को किया तो फिर मनुष्य जन्म विफल चला जाएगा। इसलिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में हमारी शक्ति है, जब तक हमारी दृष्टि शक्ति है, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ और सबल है, तब तक ही भगवान का भजन करके इस जगत से पार हो जाना पसंद है। विषय खलु सर्वतस्य, मनुष्य जन्म परमार्थ देने वाला है और सब परमार्थ भी देने वाला है, किंतु कब चला जाएगा पानी की बुलबुलों की भांति यह कोई ठीक नहीं है। आज है कल नहीं है, किंतु होगा इसी मनुष्य जन्म में ही। बिना मनुष्य जन्म के ये आत्म तत्व को जानना, भगवान का भजन करना ये संभव पर नहीं है, ये मनुष्य जन्म नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म को ये विषयों में ही बर्बाद कर देना ये ठीक नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी हमारे उनके अपने पिताजी को बतला रहे हैं, तत् साधु मन्ने अशुभ वर्ज्य देहिनां सदा उद्विग्न धियां असदग्रह हितात्मपातम विहं आत्मकूपम बलं गतोगा हरि मात्रेत। भाई ये संसार कैसा है, ये अंधकूप के समान है। कैसा अंधकूप? और अन्यत्र बतलाया है, कोई राहगीर जा रहा था बन से, प्रसंग चल रहा है प्रभुपाद जी का, और ये बैठे हुए सुन रहे हैं, बड़े खूब ध्यान के साथ में सुन रहे हैं, जैसे कि हमारे द्विवेदी जी ने परीक्षित जी के लिए बतलाया। जो सभा में तो लाखों थे, किंतु सुना किसने? परीक्षित महाराज जी उनसे सुन रहे हैं, एक एक वाणियों को वो पी रहे हैं। तो उसमें बतला रहे हैं अंधकू, क्या किसको कहते हैं अंधकू? एक कुआं जिसमें पानी नहीं है और किनारे की फूट करके उस पानी में गिर गए हैं, पानी सूख गया है और उसमें सांप बिच्छू इत्यादि रहने लग गए हैं। ऊपर में पीपल के कुछ झाड़ियां उगाई हैं, कुछ घासें चारों तरफ से भर गई, गुए को भर दिया है, इसको कहते हैं अंधकू। एक राहगीर कहीं जा रहा था, उस वन में चलते चलते बड़े भारी बाघ ने गर्जन किया और उसके ऊपर में टूट पड़ा। अब ये इसके प्राणों के लाले पड़ गए, वो भगते भगते
उस कुएं में उपस्थित हुआ और झट उसकी दो डालियों को पकड़ करके उसमें झूल गया। जब झूल गया नीचे जाएगा तो देखा जैसे एक काला सर्प, गहन सर्प, कोबरा ऐसे फट दिशा तो वह फोस फोस कर रहा, अभी जहां नीचे गए तहां काटेगा और मरेंगे, ऊपर आए तो बाघ मारेगा खा जाएगा। इतने में उनकी नजर पड़ी जिस पीपल के दो डालियों को पकड़ करके वो झूल रहा है, उसको एक सफेद चूहा और एक काला चूहा उसको उसे निकल कर झट उसे कुरने लगे, काटने लगे। और यदि झूल कर कभी रहता है तो कितनी देर तक रहेगा, वो चूहे दोनों काट करके उसे गिराएंगे ही। इतने में देखता है क्या, अब जीवन चंद मिनटों का, सेकंडों का, इतने में देखा जिस डाली को पकड़ करके वो है झूल रहा है उसके ऊपर वाली टहनी में मधुमक्खियों ने एक छत्ता लगा रखा है मधु का, और उसमें से एक बिंद तप फिर तप इस प्रकार से टपक रहा है। लोभ हो गया, मर जा रहा है, चारों तरफ में मृत्यु मर आ रही है और मरण अवश्यंभावी है। उसने मुख को बढ़ा दिया और जीभ को लंबा करके और उसका एक बूंद अपने जीभ में लिया। हा क्या मधु, हा क्या मधु, हमारी दशा ऐसे ही अंधक उसने पड़ेंगे कि कार लड़ा रहे हैं, कब हम चले जाएं, अभी चले जा रहे हैं कार पर, और कार में एक टैक्सी से या किसी चीज से ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और सब चुमार गए, सब घर वाले इतने परिवार से सभी एक साथ में सब समाप्त हो गए। अभी दिल्ली से हम लोग आ रहे थे कुछ दिन पहले, देखा ये परिवार का परिवार नष्ट हो गया, परिवार में रोने वाला पति नहीं रहा, लाखों अरबों की उनकी संपत्ति सब ऐसी ही गया। ऐसे कितने चीज होता है, जीवन का कोई ठीक नहीं है। इसमें यदि इस जीवन में यदि भगवान का भजन किया, हितात्म पातम गृहमंद रूपम बनम गो जब हरी मासे, यदि साधु संग का, यहाँ पर वन मन आजकल तो बंदी भी नहीं है, आप वन में जाकर के कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए साधु संग ही वो बन है निर्जन बन, जहां पर कि भगवान की भक्तों की अमृतमयी वाणी का फल जहां पर मिल सकता है और उसी का साधन करने से हमारा कल्याण हो सकता है। इस प्रकार से और भी उनकी बातें सुनी और सुनते ही उनके हृदय में वैराग्य कुछ उत्पन्न हो गया। घर तो गए, नौकरी पर लौटे, उन्होंने कहा कि आज से हमारा 5 रुपया प्रति महीना जाएगा, आश्रम के लिए आएगा। उनके जो बड़े अफसर थे उन्होंने 1 रुपया महीना दिया। उस समय 5 रुपये का मूल्य हम समझते हैं कि आजकल का एक, आज मैं 50-60 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, उस समय शायद इसका मूल्य 100 रुपया से भी अधिक हो, उन्होंने दे दिया। किंतु जो गए, मन तो रख दिया गुरु के चरण यहां, चले गए, गुरुकरण अभी नहीं किया, किंतु हृदय ने, उनके हृदय ने स्वीकार कर दिया गुरु के रूप में, चले गए। फिर रहा नहीं गया, कुछ दिनों के बाद में फिर आएंगे, फिर गए। एक दिन ब्रह्मचारियों के साथ उन्होंने निवेदन किया, अब मुझे अब नौकरी अच्छी नहीं लगती है, अब तो मुझे अच्छा लगता है कि अपने गुरु के पाद पद्म में रह करके इनका आदेश पालन करते हुए भगवान की प्राप्ति का मैं लक्ष्य ठीक रख सकूं, तो यही हमारे लिए सर्वस्व होगा। ब्रह्मचारी और सम्मठवासी ने कहा, जी महाराज आप ऐसा न कीजिए, 5 रुपया जो देते हैं इसलिए हमारा सब मठ चलता है, और यदि आप यदि चले आएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो ये मठ कैसा चलेगा। कहा तो नहीं, किंतु अंदर में भावना ये थी। उनसे कहा, जी महाराज अभी कुछ दिन तक आप रहिए और पीछे आपको जब शुद्ध वैराग्य हो जाएगा तब आएंगे। नहीं आप लोग डरे मत, डरने की कोई बात नहीं है, अच्छा हम देखेंगे ये क्या होता है। घर छोड़ दिया, विवाहित स्त्री भी छोड़ दिया, बाल बच्चों को भी छोड़ दिया, नौकरी को जलांजलि दे दी। जिसका हृदय भगवान के चरणों में, विशेष करके श्याम सुंदर के चरणों में लग जाता है, विश्व का कोई भी उस व्यक्ति को रखने में असमर्थ है, उनको कृष्ण के चरणों की पाने की धुन लग गई। और ऐसे महापुरुषों का संग और गुरु पात्मा का संग पाने के लिए लड़ाई छोड़ करके घर छोड़ करके चले आए। जिस समय आए इसके बाद में गौड़ीय मठ का प्रचार इतना जोर से चलने लग गया, जब ये भिक्षा जाते कहते जैसे ये सब लक्ष्मी किसकी है, नारायण की लक्ष्मी है। रावण ने त्रिदंडी वेश बना करके और सीता जी का हरण किया, ये जितने भी संसार में धनी मानी लोग हैं ये लक्ष्मी जी को अपने हाथ कैद करके रखना चाहते हैं और अपनी प्रिया बना करके रखना चाहते हैं लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं नारायण की, और उनसे जब कहते हैं कि क्या चाहते हो तो कहते हैं कि हम लक्ष्मी जी को चाहते हैं, नारायण को वो चाहते नहीं है और अपने यहां उनको रखना चाहते हैं, इसलिए रावण ने भी उनको हरण करके सीता जी को ले गया। ये कहते थे कि ये तो समस्त सारा विश्व भगवान का है, इस अवश्य मिलम सर्वम जबकि जगत जगत तेन तत्न मांजदा मत सिद्धम इत्यादि बतलाए, ये समस्त विश्व उन्हीं का है, हम सभी उन्हीं के हैं। बुद्धिमान वो है जो इस समस्त संपत्ति को इसका एक एक कण भगवान की सेवा में अर्पित कर दे और अपने को भी अर्पित कर दे और विश्व को भी उनके चरण में अर्पित कर दे, तो इसी से विश्व का कल्याण और मंगल हो सकता है। जब वो आए तो प्रचार जब जाते अपने आप 10-10 बोरी 20-20 बोरी चावल दाल तरकारी और सब चीजें घी के तीन ये सब भिक्षा हो जाती और बड़े बड़े उत्सव होने लग गए। गौड़ीय मठ का प्रचार धारा उस समय से आरंभ हुआ जब ये मठ में प्रवेश किया। नहीं, एक समय की बात है कि वो बॉम्बे में गए। इनके जीवन क्षेत्र में सभी शिक्षा की बातें, इसलिए मैं थोड़ा सा उल्लेख कर रहा हूं और नहीं तो और बुरा कुछ रह जाएगा। बॉम्बे में एक बार गए, सोचा कि ऐसे जाने से काम नहीं चलेगा, हमको बैराग्य की भी जलांजलि देनी होगी, बैराग्य में भी प्रतिष्ठा यदि आ जाए कि मैं बड़ा बैरागी हूं, मैं भाया बड़ा भजन करने वाला हूं, तो सब गड़बड़ हो जाए। तिना बती सुनी के न करो अभी सही सुनो ना अमानिना मान दे न कृत्य सदा। ये चैतन्य महाप्रभु जी के एक बड़ा सुंदर वाणी है, उपदेश है। यदि भगवान का भजन करने की इच्छा है तो तिना तीन से भी अपने को दीनहीन समझने, अभिमान उसके अंदर ना आए। तिण में भी अपना कुछ अभिमान होता है, हवा आएगी उड़ करके हमारे सिर पर चढ़ जाएगी, किंतु वैष्णव लोग उनसे भी दीनहीन होते हैं। वृक्ष को काट दिया जाए नहीं बोलता है, पानी ना दो कुछ नहीं बोलेगा, फल ऐसे छोड़ लो कुछ नहीं बोलेगा, पत्थर मारो फल देगा, और उसको काट करके अपने पलंग और ये सब के काम लगाओ, नीचे जाओ तो छाया देगा। गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडे के दिनों में गर्मी देता है, ऐसे संत होना चाहिए। यदि भगवान का भजन करना है तो ऐसा भी संतों में होना, सही सुनता होनी चाहिए और दूसरों को सम्मान दे, और दूसरों को यदि सम्मान कोई देता है तो उसका भूखा ना रहे, सम्मान की इच्छा कभी ना करे, दूसरों को यथायोग्य भगवान का उसमें निवास है इसलिए उसको सम्मान दे। ये बच्चों के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने सबके लिए ये उपदेश सुंदर दिया। यदि भगवान का भजन करते 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 वैराग्य है तो वैराग्य भगवान के भक्ति में सहायक होगा, और यदि भक्ति नहीं है और वैराग्य होगा तो उल्टा उसको लेकर के डुबा देगा वो वैराग्य। वो वैराग्य किसी काम का भी नहीं, हृदय को भी सुखा देता है। उन्होंने सोचा कि वो वैराग्य किस काम का है यदि भगवान का भजन में न लगे, इसलिए वो ऐसे नहीं चलते थे। एक कार ले लिया किराया पर और कार में चढ़ करके एक बड़े सेठ के यहां गए, वहां जाकर के झट एकदम उठ गए और वहां पर जाकर के उनके गद्दी के पास में बैठने लगे। वो तो सोचा जैसे ये कुछ लेने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा जैसे भाई इनको 50 रुपया दे दो, वो भी माने झट एकदम चले गए निकट। फिर कहा जैसे 100 दो, 200 रुपया दो, 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, और वो झट उनके गद्दी पर जाकर के बैठ गए। कहा हम कुछ आपको बतलाने के लिए, आपको देने के लिए है, लेने के लिए नहीं, किंतु उसको सुनने का फुर्सत नहीं है। 5000 रुपया दिया, किंतु 5000 दिन उन्होंने ले लिया लेकर कैसे चुपचाप। कहे महाराज जी आप दूसरे दिन आइए, आज समय नहीं है, बस वहां से चले आए, कुछ लिया नहीं। एक वर्ष के बाद में फिर वहीं पर गए, देखा कि वो गद्दी नहीं और वो सेठ भी नहीं, वहां पर 50 लगे थे टेलीफोन, टेलीफोन नहीं। काजे में गलत तो नहीं आ गया, देखा जैसे नहीं, घूम घाम करके पूछा उनका कोई पता नहीं। नीचे जब उतरे तो देखा क्या, कोई एक आदमी थे वो रास्ते के ऊपर में पथ मार्ग पर उन्होंने एक कपड़े 4-5 रखे थे छान के। उन्होंने स्वामी जी को देखकर के बुलाया, महाराज जी सुनिए सुनिए, आप किसको ढूंढ रहे हैं? तो मैं अमुक सेठ को ढूंढ रहा हूं जो कि मैं पिछले वर्ष आया था, तो उन्होंने कहा था कि समय नहीं है और मैं थोड़ा सा उनसे मिलना चाहता हूं। तो ऊपर में मिले तो नहीं तो आप आइए यहां पर बैठिए, बस एक कपड़ा अपना लेकर के बिछा दिया और उनको बैठा दिया। महाराज मैं वही व्यक्ति हूं, उस दिन मुझे फुर्सत नहीं थी, आज मुझे खूब फुर्सत है, आप मुझे बतलाइए मुझे क्या करना चाहिए। देखो बिना भगवान का भजन का कुछ नहीं, ऐसे ये धन आता है और चला जाता है, आएगा शरीर भी और शरीर चला जाता है। इसलिए मनुष्य जन्म उसी का सार्थक है जो भगवत तत्व को जान करके राधा कृष्ण के चरणों में अपने को समर्पित कर दे। ने? वो तो ऐसे हैं, पत्रम पुष्पम फल तो भक्त आप प्रयत्ति, यदि पत्रम पुष्प भी भगवान को दे दिया, यहाँ तक कि भगवान के नाम करने में कुछ भी नहीं लगता है, उसमें न रुपया लगता है न पैसा लगता है, भक्ति में कुछ नहीं लगता है। और इसमें हम ब्राह्मण हैं तभी भगवान का भजन कर सकते हैं, ये भी कोई बात नहीं है। जहां पर जिस कुल में जैसा भी निर्धन व्यक्ति हो, चाहे जो कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य मात्र का ये भक्ति में अधिकार है और प्रत्येक जीवों का अधिकार है। विद्वान है वही कर सकता है भक्ति, या भगवान का नाम कर सकता है, ऐसी बात नहीं। इस तरह से उद्देश्य लेने के बाद में वो उठे, एकदम मुड़ गए और भगवान का भजन करने लग गए बेचारे। इस तरह से किस प्रकार से नास्तिकों को भी आस्तिक किया जा सकता है, किस प्रकार से पाषंडों का दलन करके और भगवान के भजन में लगाया जा सकता है, और किस प्रकार से राज्यलक्ष्मी को, सीता जी को रावण के चंद्र से हटा करके और भगवान के चरण में अर्पित किया जा सकता है, ये सब गुणों को देखकर के प्रभुपाद जी ने पश्चात देश में इनको भेजने के लिए निश्चित किया। पश्चात देश में ये इंग्लैंड में गए, वहां के राजा और महाराजा, उसमें शायद विक्टोरिया थी या पंचम जॉर्ज से मुझे याद ठीक नहीं, किंतु इन्हीं लोगों में से कोई होगा, भारतवर्ष के बड़े बड़े नरेश, बड़े बड़े